बाइबल से पढ़ा जाएगा प्रकाशित वाक्य 2:12-17। और पिरगमन की कलिसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास युग साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षाओं को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षाओं को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और जीसिन टीवी दर्शकों, बहुत से लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यद्यपि वे क्यों ना कहे कि वे परमेश्वर को जानते हैं और विश्वास करते हैं, मगर उनमें से सारे के सारे उद्धार नहीं पा सकते। हमारे प्रभु ने यूहन्ना 3:36 में कहा, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। वो जो प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इसी प्रकार से केवल तब जब वो यीशु मसीह पर जो परमेश्वर का पुत्र है उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं तभी वे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा पा सकते हैं। मगर एक बार फिर से, चाहे वे यीशु पर विश्वास का अंगीकार क्यों ना करें तो भी उनमें से सभी उद्धार नहीं पा सकते। उनका विश्वास सच्चा विश्वास होना चाहिए। अपने विश्वास को सच्चा विश्वास साबित करने के लिए उन्हें अवश्य ही पुत्र की माननी है, जैसे कि हमारे प्रभु ने कहा। हमारे प्रभु ने कहा, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन नहीं देखेगा। पुत्र की मानना उसका मतलब है वचनानुसार जीवन जीना, जिन्हें यीशु सिखाता है। इसीलिए अगर वो यीशु पर विश्वास का अंगीकार अपने होठों से करते हैं मगर उसकी बातें नहीं मानते तो उनका विश्वास सच्चा नहीं है और वे अनंत जीवन नहीं पा सकते। आज के पाठ में प्रभु कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। ये वाक्य कि जो जय पाए, ये उसको दर्शाता है जो संसार की बुराई को हराता है और प्रभु की बातों को मानने के द्वारा विजयी होता है। केवल तब जब एक व्यक्ति इस तरह से विजयी होता है तभी वो उद्धार की प्रतिज्ञा यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर सकता है। और केवल यही वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के नाम को जानता है। यदि वो सिर्फ अपनी ओर से कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु पर विश्वास करता हूं, तो ये वो व्यक्ति नहीं है जो सचमुच प्रभु को जानता हो। बजाय इसके जो महत्वपूर्ण बात है वो यह कि प्रभु की ओर से भी यह बात होनी चाहिए कि मैं भी तुझे जानता हूं। क्या आपको पता है कि इस देश का राष्ट्रपति कौन है? कौन है इस देश का राष्ट्रपति? आप जानते हैं, मगर क्या वो आपको जानता है? वो आपको नहीं जानता। यदि भी आप कहते हैं कि आप परमेश्वर और प्रभु को जानते हैं, मगर अगर प्रभु और परमेश्वर कहे कि मैं आपको नहीं जानता तो आपका अंगीकार बेकार है। क्या बाइबल पहला यूहन्ना इस तरह से नहीं कहता कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते? तो ये झूठ है। इसीलिए परमेश्वर कहेगा कि मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, आप मेरी पुत्र है। मैं आपको जानता हूँ, आप मेरी पुत्री है। वो ऐसा कहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ज्योति में है, इसीलिए उसकी संतान भी ज्योति में होनी चाहिए। यदि आप ज्योति में ना रहें तो परमेश्वर नहीं कहेगा कि आप उसकी संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको अनदेखा करता है। इसीलिए आप आजमाइशों में, क्लेशों में या विपत्तियों में पड़ जाएंगे, या फिर आपको बीमारियां लग जाएगी। यूहन्ना 10 अध्याय 25 और 27 साफ रूप से बताता है कि प्रभु किसको कहता है कि मैं उसे जानता हूं। ये साफ रूप से लिखा हुआ है। हमारे प्रभु ने कहा कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति ही नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। केवल तब जब एक व्यक्ति यीशु में विश्वास करने वाला बनता है और उसकी आवाज सुनता है और उसके पीछे पीछे चलता है, उसे प्रभु कहेगा कि मैं भी तुझे जानता हूं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 6 और 7 पर कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परंतु अगर कोई कहता है कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और फिर हम अंधकार में चलें और असत्य में चलें, तो यह झूठ है। तो फिर यह कहना भी झूठ है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रेम करते हैं। यह सब झूठ है। जब मैं जागृति सभाएं करता था कोरिया में बीते समय में, मैं लोगों से पूछता था कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं, और वे कहते थे आमीन। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस कलिसिया के सेवक पास्टर मेरे पास आते थे और कहते थे कि डॉक्टर ली, हमारी कलिसिया में ये और वो समस्या चल रही है। वे सब एक दूसरे की ओर पीठ फेर देते हैं और मेरी बातों को कभी आमीन नहीं कहते, और वे सभाओं के दौरान सो भी जाते हैं। इसलिए कृपया आप इस समस्या को सुलझाइए इस कलिसिया की। इसलिए मैं उनसे पूछता था कि क्या वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और वो कहते थे आमीन। इसलिए मैं उनसे पूछता था, तो फिर कैसे वे एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, एक दूसरे से बैर रखते हैं पवित्र भवन में? फिर मैं उन्हें समझाता था कि परमेश्वर से प्रेम करना क्या है, और बाद में मैं फिर से उनसे पूछता था कि क्या वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। और जब मैं ऐसा करता था तब कोई भी इस बार आमीन नहीं कह पाता था। लोग अपना मसीह जीवन ये जाने बगैर ही जीते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना क्या है। यदि आप अभी भी अंधकार में चलते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उस पर विश्वास करता हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप सत्य पर नहीं चलते। हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते क्योंकि आप वचनानुसार नहीं चलते, इसलिए आप उसका अभ्यास नहीं करते बल्कि अधार्मिकता करते हैं। परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो जो ज्योति में चलता है, जो सत्य पर चलता है और जो परमेश्वर से सहभागिता रखता है, वो वही है। वही ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर और प्रभु को सचमुच जानता है, और वो सभी पापों से, अपने सभी पापों से यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो सकता है। क्या आपको लगता नहीं कि यह झूठ है यदि आप ये कहें कि मैं विश्वास करता हूं, मैंने तो क्षमा पा लिया है, जबकि आप वचनानुसार तक नहीं जीते? बाइबल साफ रूप से बताती है कि जब आप परमेश्वर के वचनानुसार जीते हैं, ज्योति में चलते हैं, तो प्रभु का बहुमूल्य लहू आपको साफ करता है आपके पापों से। जब आप ज्योति में चलते हैं, वचनानुसार जीते हैं, आज्ञाएं मानते हैं, मगर अगर आप ऐसा ना करें, अपने हृदय में बैर रखें, अगर आपके पास अभी भी चोरी का मन है, ईर्ष्या और जलन का मन है, यदि आप अभी भी दूसरों पर दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, यदि आप बकवाद करते हैं, परमेश्वर ने कहा है इन सब बातों को दूर कीजिए। निंदा करना, दोष लगाना, आप इन्हें दूर कीजिए, मगर अभी भी आप दूसरों पर दोष लगाते हैं। भाइयों और बहनों, यीशु ने केवल सत्य और भलाई की बातें की और उसने बहुत से चमत्कार और आश्चर्य कर्म पिता परमेश्वर के नाम से किए, मगर उसके दिनों में भी ऐसे लोग थे जो उस पर विश्वास नहीं करते थे। हमारे प्रभु ने उनसे कहा कि तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यदि वे प्रभु की सच्ची भेड़ें हैं तो वे प्रभु के वचनों से, उसके कामों से प्रभु पर विश्वास करेंगे, और प्रभु पर विश्वास करने से वो उसकी आवाज को सुनेंगे और उसके पीछे पीछे चलेंगे। ऐसी भेड़ें प्रभु की भेड़ें हैं, और प्रभु कहता है कि तुम मेरी भेड़ें हो और मैं तुम्हें जानता हूं। आप भी प्रभु को जानने पाए और प्रभु भी कहने पाए कि वो आपको जानता है, ताकि आप उसकी प्रिय भेड़े बनने पाए जो उसके साथ सच्ची सहभागिता करते हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जो वचन प्रभु ने पिरगुमन की कलिसिया को दिए, अभी तक हमने उनके सामान्य अर्थ को देखा, लेकिन इसके अलावा उसमें विशेष अर्थ पाया जाता है। वो वचन जो 7 कलिसियाओं को दिए गए हैं, वो किसी भी समय में किसी भी कलिसिया पर लागू हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो विशेष रूप से उनके लिए है जो संसार के अंत के दिनों में जी रहे हैं। इफिसुस की कलिसिया को जो वचन दिए गए थे, वो वास्तविकता में आज की कलिसियाओं के लिए है जिनकी उन्नति किसी निश्चित बिंदु तक हो चुकी है, अपने जुनून और जोश के चलते उस प्रेम के द्वारा जो पहला प्रेम प्रभु के लिए था, परंतु फिर उनकी उन्नति रुक गई और पहले से काम करना उन्होंने छोड़ दी। यह एक ऐसी कलिसिया के बारे में है जो अभी अभी शुरू हुई और जागृति का अनुभव कर रही है, और कलिसिया की शुरुआत के बाद 1 या 2 साल के बाद अगर कोई जागृति ना हो तो उसमें समस्या है। उस कलिसिया के चरवाहे को भेड़ों की अगुवाई जल के झरने और हरी चराइयों में करनी होती है, मगर चरवाहा नहीं कर पाता। हालांकि उनकी उन्नति रुक गई है और उन्होंने पहले से काम छोड़ दिए हैं, मगर फिर भी वे इतने घमंडी बन गए हैं कि वे सोचते हैं कि उन्होंने बहुत कर लिया है, और अभी तक जो कुछ भी उनकी उपलब्धि है वे उसी को सुरक्षित रखने और उसी में आनंदित रहने की कोशिश करते हैं परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करने के बजाय। इसलिए ये बहुत ही दुखद है, ये दुखद है पहले प्रेम को खो देना। आप परमेश्वर से मिले, आपने पवित्र आत्मा पाया, आपने चंगाई पाई पहले प्रेम के द्वारा, और उस वक्त आप कितने खुश हुआ करते थे। हालांकि आप सत्य को अच्छे से नहीं जानते थे, स्वर्ग और नर्क को नहीं जानते थे, मगर आप बहुत खुश थे। आपके जैसे लोग तमाम आराधनाओं में, तमाम प्रार्थनाओं में शामिल होते थे, पवित्र आत्मा से भरे रहते थे, मगर जब आपने इस पहले प्रेम को खो दिया तो आपने अपना आनंद खो दिया और खुशी को भी खो दिया, धन्यवाद को भी खो दिया। पति पत्नी के बीच में भी ऐसा ही होता है। यदि उनका प्रेम ठंडा ना हो शादी करने के बाद भी, तो वो परिवार कितना सुंदर परिवार हो सकता है यदि वो पहला प्रेम ना खोएं, चाहे 10 साल हो जाएं, 20 साल, 50 साल या 60 साल, तो आपका परिवार एक सच्चा खुशी से भरा परिवार होगा। वो प्रेम गहरा होता जाना चाहिए जैसे जैसे समय गुजरता है। हाल ही में मुझे सुनने को मिला कि 50 और 60 की उम्र के जो लोग हैं वो बहुत अधिक तलाक ले रहे हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के बाद, उनकी शादियां करने के बाद और अपने पोतों को देखने के बाद वो तलाक ले रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। बीते समय में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उन्होंने एक दूसरे से वादे किए थे कि चाहे उनके बाल क्यों ना पक जाएं, वे एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे, मगर उन्होंने उसे त्याग दिया। ये दुखद नहीं है? 50 या 60 की उम्र में तलाक लेना, ये कितना दुखद है। स्मुर्ना की कलिसिया को जो वचन दिए गए, वो आज की उन कलिसियाओं के लिए है जो अलग अलग प्रकार के क्लेश और सताव का सामना उनसे करते हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि वे प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट करते हैं। प्रभु उनसे चाहता है कि वे उसकी प्रतिज्ञा की आशा को थामे रखें, कि विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यद्यपि वो इस तरह की परिस्थिति में हैं, मगर प्राण देने तक विश्वासी रहे। और साथ ही आज के पाठ में जो वचन प्रभु ने पिरगमन की कलीसिया को दिए, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी निश्चित परिस्थिति पर लागू होती हैं। उसका मतलब है ऐसे वचन जो आज की उन कलीसियाओं के लिए है जो पाखंड विचारधाराओं से भ्रष्ट हो गए हैं। बाहरी रूप से तो वे परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, मगर अंदर से उनमें यीशु मसीह का नाम नहीं है। और इससे भी बुरा यह है कि वे यीशु मसीह के नाम का इनकार करते हैं या परमेश्वर के वचनों को बिगाड़ते या बदल देते हैं। वे प्रभु के वचनों को तोड़ मरोड़ देते हैं। वे ना केवल खुद को भरमाते हैं, बल्कि दूसरों को भी भरमाते हैं कि वे पाखंड की इन शिक्षाओं से भ्रष्ट हो जाएं, जो कि पाखंड विचारधारा है। और उनमें भी जो चर्च जाते हैं और कहते हैं कि वे प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो सत्य को अच्छे से नहीं पहचान पाते, इसलिए वे इन पाखंडी शिक्षाओं के द्वारा प्रभावित होते हैं। इस तरह के लोगों के लिए प्रभु अपने आप को कहता है कि जिसके पास दोधारी तलवार है, ताकि इस दोधारी तलवार से उनकी गलत शिक्षाओं को आर पार किया जाए, ताकि उनमें से कुछ ऐसे हो पाएं जो पश्चाताप कर सकें और उद्धार प्राप्त कर सके अंत में, चाहे वे बहाना क्यों ना बनाए, चाहे वे ये क्यों ना कहें कि मैं तो नहीं जानता था, मुझे लगता था कि वही सही है। मगर अंतिम न्याय के दिन, जब परमेश्वर का वचन, जो बहुत ही शुद्ध है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, उनकी बातों को प्रकाशित करेगा, उनके कामों को प्रकाशित करेगा, तो वे साफ रूप से देखेंगे कि वे सत्य से कितने दूर थे। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से प्रभु कहता है, मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। कल्ट शैतान का काम है। वे बाहरी रूप से तो परमेश्वर के वचनों को कहते हैं और चर्च के समान ही होते हैं, मगर धूर्तता के साथ वे परमेश्वर के वचन के मर्म को बिगाड़ देते हैं। तो फिर बाइबल के अनुसार हमारे लिए पाखंडी शिक्षाओं को पहचानने का मापदंड क्या है? आपको उसकी पहचान मनुष्यों के मापदंड से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों से पहचानना चाहिए। मगर जो लोग परमेश्वर में विश्वास करने का दावा करते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मापदंड स्थापित किए हुए होते हैं, और जब दूसरे उनकी शिक्षाओं या उनके सिद्धांत के अनुसार नहीं होते, तो वे दूसरों को गलत और पाखंडी कहते हैं। तो फिर पाखंड या भ्रष्ट शिक्षाओं को पहचानने के लिए बाइबल में क्या मापदंड है? इसको हम दूसरा पत्रस 2:1-3 पद में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। वे प्रभु यीशु का इनकार करेंगे, जिसने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर उन्हें मोल लिया, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, और बहुत तेरे उनकी नाई लोचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। पाखंड को पहचानने का सबसे साफ मापदंड यह है कि वे प्रभु का इनकार करेंगे, जिसने उन्हें मोल लिया है। वे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, वे प्रभु का इनकार करते हैं। आप क्रूस के संदेश को जानते हैं, है कि नहीं? आप जानते हैं कि क्यों वचन देहधारी हुआ और इस धरती पर आया? क्यों वचन, जो परमेश्वर, जो प्रभु है, एकलौता पुत्र इस धरती पर आया? क्यों? आप जानते हैं इसका कारण? उसे मनुष्य देह में होना था, मनुष्य के रूप में उसे होना था। आदम ने पाप किया, और आदम के सभी वंशज वे पापी बन गए। और एक पापी पापी को छुटकारा नहीं दे सकता है उनके पापों से, इसीलिए प्रभु को पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पाया गया। इसीलिए उसके अंदर कोई मूल पाप नहीं है और साथ ही उसने कभी कोई पाप नहीं किया है। वो दोष रहित था, दाग रहित था, क्योंकि उसने केवल परमेश्वर के वचनानुसार जीवन जिया जन्म से ही, क्योंकि उसमें ना तो कोई मूल पाप था ना स्वयं का कोई पाप। इसलिए वो हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकता था। हमारा प्रभु वचन था, वो मनुष्य देह में इस संसार में आया। और जो इस तथ्य का इनकार करता है वही मसीह विरोधी है, वही कल्ट और पाखंड है। प्रभु के चेले जब प्रभु के पास आकर कहने लगे कि कुछ लोग प्रभु के नाम से भूतों को निकालते हैं, तो प्रभु ने कहा कि उन्हें रहने दो। प्रभु ने उन्हें रोका नहीं जो उसके नाम से भूतों को निकालते थे, यद्यपि वो उसके चेले नहीं थे। सबसे साफ मापदंड जो कल्ट को पहचानने का है वो यह कि वो प्रभु का इनकार करते हैं जिसने उन्हें मोल लिया है। वे जो प्रभु का इनकार करते हैं और क्रूस के संदेश का इनकार करते हैं, वे है पाखंड, वे है कल्ट। और वे कौन हैं? यदि वे सच्चे मसीह नहीं हैं, वे प्रभु का इनकार करते हैं, जो हमें अनंत मृत्यु की सजा से बचा सकता है वो हमारा प्रभु है, वो केवल यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु ने हमें हमारे पापों से साफ किया है और हमें उद्धार दिया है, इसलिए परमेश्वर की उद्धार पाई हुई संतान वो है जिन्हें प्रभु ने अपने लोहू से मोल लिया है। इसलिए ऐसे पंथ की शिक्षाएं जो प्रभु का इनकार करती हैं, जिसने अपने लोहू से हमें मोल लिया है, वो पाखंड है। इसीलिए यीशु के द्वारा क्रूस पर चढ़ने और मरकर जी उठने के काम को करने से पहले पाखंड जैसे शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए पुराने नियम में पाखंड ऐसा कोई शब्द नहीं था। यीशु का अर्थ है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। इसका मतलब उद्धारकर्ता नहीं है, इसका मतलब यह है कि वह अपने लोगों को बचाएगा। ये उसका क्रूस पर चढ़ने से पहले है, इसलिए यीशु का मतलब है वो बचाएगा अपने लोगों को पापों से। मगर मसीह का मतलब है वह जो अभिषिक्त है। क्रूस पर यीशु के चढ़ने के बाद और पुनः जीवित होने के बाद उसने अपना कार्य पूरा किया और हमारा उद्धारकर्ता बन गया। इसीलिए प्रभु का इनकार करना इसके बाद शुरू हुआ। इसलिए जब हम प्रभु कहते हैं, इसका मतलब है यीशु मसीह, यीशु नहीं। आपको इसे साफ रूप से जान लेना है। इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करनी है। आप बाइबल पढ़ें, प्रेरित पत्रस, प्रेरित पौलुस, वे प्रभु यीशु मसीह शब्द का इस्तेमाल करते थे। यीशु मसीह प्रभु, उन्होंने इसका बहुत सा इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह नासरी, इस शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। वे हमेशा मसीह शब्द का इस्तेमाल करते थे। प्रभु के क्रूस पर चढ़ने से पहले बाइबल में कोई मसीह नहीं है। ये प्रभु के द्वारा क्रूस पर चढ़ने से पहले है। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने जब मसीह शब्द को कायम कर दिया और उसके बाद जिन लोगों ने यीशु मसीह का इनकार किया, उन्हीं की वजह से पाखंडी शिक्षाएं उत्पन्न हुई। इसीलिए पुराने नियम में कूपंथ जैसा कोई शब्द नहीं है। और साथ ही चारों सुसमाचारों में ऐसे कोई शब्द नहीं है, चाहे वो मती सुसमाचार हो, मरकुस, लूका या यहूना। हालांकि उन्होंने बालजबूल शब्द का इस्तेमाल किया, मगर उन्होंने कूपंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यही कारण है कि पुराने नियम में और नए नियम के चारों सुसमाचारों में पाखंड जैसा कुछ भी नहीं है। और यहूदी पौलुस को नासरियों के कूपंथ का मुखिया कहते थे। उन्होंने कूपंथ शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि उन्होंने प्रभु का इनकार किया जिसने उन्हें मोल लिया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि मसीहियत उनके यहूदी दृष्टिकोण के अनुसार नहीं थी। कुपंथ इस शब्द में दो अर्थ पाए जाते हैं, आत्मिक अर्थ पाया जाता है और एक शारीरिक अर्थ। डिक्शनरी में इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि कोई संप्रदाय या कोई पंथ जो कि एक धार्मिक समूह है जिसकी एक विचारधारा होती है और वे उस पर चलते हैं। ये शारीरिक परिभाषा है या संसार की परिभाषा है और इस परिभाषा के अनुसार कोई एक समूह जिसकी धार्मिक विचारधारा से दूसरे समूहों की धार्मिक विचारधाराएं अलग हो उसके लिए सभी दूसरी धार्मिक विचारधाराएं कुपंथ है। परंतु जिस कुपंथ की परिभाषा की बात हम इस वक्त कर रहे हैं वो उस कुपंथ के विषय में है जो मसीहत के भीतर है। मसीहत के भीतर ही यदि लोग दूसरों को कुपंथ कहना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य ही बाइबल के मानक के आधार पर जांचना चाहिए कि क्या वो प्रभु का इनकार करते हैं या नहीं जिसने उन्हें मोल लिया है। मगर जैसे जैसे अंत के दिनों के करीब हम आते हैं उतना ही अधिक कुपंथ की शिक्षाएं बढ़ती जाती हैं। वे अपने आप को ऐसे कायम करते हैं जैसे मानो वे ही उद्धार करता है और वे लोगों को सिखाते हैं कि उनके द्वारा वो उद्धार पा सकते हैं। वे लोगों को इस प्रकार से दिखाते सिखाते बहकाते और भरमाते हैं कि लोग यीशु मसीह के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से उद्धार पा सकते हैं। परंतु जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वे अपनी सच्ची पहचान प्रकट कर लेते हैं। वे कुकर्म करते हैं और सत्य की शिक्षाओं को बाधित करते हैं। अपने लालच के चलते अपने साथियों की धन संपत्ति को लेकर वे अपना फायदा उठाते हैं। इसके साथ साथ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वे बहुत से अवैध कार्य करते हैं। मगर यहाँ पर एक बात है जिसे अवश्य ही आपको याद रखना है, यद्यपि वे बहुत से अवैध कार्य क्यों ना करें, आपको कुपंथ या कुपंथी कहकर उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए। जो दूसरों को कुपंथ कहकर दोष लगाते हैं और निंदा करते हैं, क्या वे स्वयं अवैध कार्य नहीं करते? जो अवैध कार्य करते हैं और पाप करते हैं, क्या बाइबल उन्हें कोई संप्रदाय या कुपंथ कहती है? नहीं, बाइबल ऐसा नहीं करती है। हालांकि ये आवश्यक है कि उन्हें डांटे, उन्हें सिखाएं ताकि वे पश्चाताप कर सकें और अवैध कामों से मन फिरा सकें और सत्य में आ सकें। मगर यद्यपि वे अवैध करते हैं जो सत्य के विरुद्ध है, मगर जब तक वे यीशु मसीह का इनकार नहीं करते, वो प्रभु जिसने हमें अपने लोहू से मोल लिया है, आपको कभी भी अवश्य ही उन पर यह दोष नहीं लगाना है कि वे पाखंड है या कोई पाखंडी दल है। उन्हें पिता परमेश्वर पर, पुत्र परमेश्वर पर और पवित्र आत्मा परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। उन्हें विश्वास करना चाहिए त्रिएक परमेश्वर पर और उन्हें विश्वास करना चाहिए कि स्वर्ग और नर्क है और बाइबल सत्य है। यदि कोई स्वर्ग और नर्क ना हो तो आपको चर्च आने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग और नर्क है और न्याय होगा। इसलिए बेहतर स्वर्ग में जाने के लिए एक अच्छा विश्वासी जीवन जीने की हम कोशिश करते हैं परमेश्वर की संतान होने के नाते। यदि वे इनमें से किसी भी बात का इनकार करें, चाहे वे प्रभु का इनकार ना भी करते हो, तो भी वे कुपंथ है, क्योंकि ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई है। वे सब बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए वे इनमें से अगर किसी एक का भी इनकार करते हैं तो वे कुपंथ है, क्योंकि ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। ये सब बातें आपस में संबंधित है। प्रेरितों के काम 5:35-39 पद में, जिसका नाम गमलियल था और वो एक फरीसी था जो व्यवस्थापक था और लोगों में माननीय था, उसने उन लोगों को कहा जो मसीहत का विरोध करते थे, दोष लगाते थे। उसने कहा, हे इसराइलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सो समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले त्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो ली, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसीलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तो वह मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हो तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। यद्यपि ऐसे लोग हैं जो इस कलीसिया को नाश करने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम चट्टान के समान स्थिर है। इसीलिए आपको याद रखना चाहिए, कि केवल परमेश्वर ही न्याय कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम दूसरा पत्रस 2:1 फिर से देखें। यहाँ पर लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोह लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ये झूठे उपदेशक और झूठे भविष्यवक्ता होंगे, जो छिप छिप कर पाखंड का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर झूठ वो कुछ ऐसा नहीं कि दूसरों को धोखा देना हो, बल्कि यह यीशु मसीह का इनकार करना है जो सत्य है। 1 यूहन्ना 2:22 में लिखा है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। वो जो प्रभु का इनकार करता है और जो इस तथ्य का इनकार करता है कि यीशु ही मसीह है और हमारा उद्धार करता है, ये है वो जो झूठा है। वो जो पिता परमेश्वर और पुत्र का इनकार करता है, वो मसीह विरोधी है। और मसीह विरोधी कुपंथ है। और यहाँ पर लिखा है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे उपदेशक वे भी कुपंथ है, जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं जिसने उन्हें मोल लिया है। और अब 1 यूहन्ना 4:1-3 कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, तो फिर हम किस रीति से पहचान सकते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं? यहाँ लिखा है कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। वे विश्वास करते हैं कि यीशु इस धरती पर शरीर में होकर आया। ये है क्रूस का संदेश, क्योंकि वचन शरीर में होना चाहिए और मनुष्य रूप में संसार में आना चाहिए। इसीलिए यीशु इस धरती पर शरीर में होकर आया और उसने क्रूस उठाया, अपना लहू बहाया हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए। जब कोई आत्मा इस बात को मान लेती है, तो वह आत्मा परमेश्वर की ओर से है। क्या आप ऐसा अंगीकार नहीं करते? आप अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर इस धरती पर आया। आप अंगीकार करते हैं कि नहीं? और आप इसका कारण भी जानते हैं, इसलिए आप परमेश्वर की ओर से है। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। हर आत्मा जो यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो आत्मा जो यीशु का अंगीकार नहीं करती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, बल्कि दुष्ट की ओर से है। मसीह विरोधी प्रभु के विरुद्ध है। वे प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हम ऐसे लोगों को कुपंथ कहते हैं। वे जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा पाया है, वे वो है जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो शरीर में होकर आया। वे वो है जो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर पर, पुत्र परमेश्वर पर और पवित्र आत्मा परमेश्वर पर। जब वे परमेश्वर की आत्मा पाते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर की संतान की मोहर उनके ऊपर लग जाती है, और पवित्र आत्मा की मदद से वे सत्य को जानते हैं और सत्य के अनुसार जीते हैं। दूसरी तरफ मसीह विरोधी वो है जो यीशु मसीह के विरुद्ध और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। वे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का इनकार करते हैं। यीशु मसीह को ना मानना, यह तथ्य कुछ और नहीं बल्कि परमेश्वर के विरोध में उठ खड़ा होना है, जिसने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा था। बाइबल के आधार पर आप योग्य होने चाहिए कि आप पहचान सकें कि पाखंड क्या है, झूठे भविष्यवक्ता कौन है, झूठे उपदेशक कौन है और मसीह विरोधी कौन है। आप पाखंड की शिक्षाओं से भरमाए नहीं जाने चाहिए। और साथ ही साथ चोखी दोधारी तलवार के द्वारा, जो कि परमेश्वर का वचन है, आप उन्हें सिखाने के योग्य भी होने चाहिए जो पाखंड की शिक्षाओं के पीछे हो लिए है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आपको उनसे वाद विवाद करना है। तीतुस 3:10 कहता है, किसी पाखंडी को एक या दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। उनसे लड़ने के बजाय आपको सिर्फ उन्हें एक या दो बार चिताना है सत्य के वचन के द्वारा, और यदि वे ना सुने तो उनसे अलग रहना है। यदि वे सुने, एहसास करें और मन फिराएं तो यह अच्छा है, मगर यदि वे ना करें तो यह आपको कहता है कि उनसे अलग रहे। वो इसलिए नहीं कि आप उन्हें नापसंद करते हो या बैर रखते हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके साथ तर्क वितर्क करते समय कहीं आप भी उनकी शिक्षाओं से बिगड़ ना जाएं, यदि आप सत्य में स्थिर ना रह पाए तो। वे चालाकी से सत्य को बिगाड़ देते हैं और दूसरों की कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। इसीलिए वचन के कमजोर ज्ञान से आपको उनसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। वो जिसके पास वचन पर अधिकार है उसे ही आत्मिक अधिकार के साथ उन्हें सत्य बताना चाहिए। मगर एक बार पाखंड की शिक्षाओं से भ्रष्ट होकर उनके लिए फिर मन फिराना या एहसास करना आसान नहीं होता। वो समय की बर्बादी होती है उनसे तर्क वितर्क करना। इसलिए परमेश्वर आपको कहता है कि ऐसे लोगों से अलग रहें। परंतु प्रभु ऐसे लोगों को भी जो पाखंड की शिक्षाओं में गिर गए हैं एक अवसर देना चाहता है कि वे पश्चाताप करें और मन फिराएं। इसलिए उसने बिलाम और निकुलियों की शिक्षाओं के बारे में हमें सबक दिया है और उन्हें डांटा है जो उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। तो फिर आप बिलाम के मामले से क्या सीख सकते हैं? पहली चीज, यह नामधारी विश्वास के लिए चेतावनी है जो संसार से समझौता करते हैं। प्रभु हमें सिखाता है कि ऐसे विश्वास में शरीर की विशेषताएं पाई जाती हैं, जो लोगों को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर करते हैं, यद्यपि वे परमेश्वर की इच्छा जानते हैं। इसीलिए आपको कभी भी संसार से समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है? कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि वह परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है, मगर हृदय में इस तरह की विशेषता होने के कारण वे सटीक रूप से परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा सकते हैं। इसके साथ साथ शैतान भी उन्हें उकसा सकता है कि वे दूसरों को भरमाए कि वे सत्य को त्याग दें, और फिर वो सब के सब मृत्यु की मार्ग की ओर चले जाते हैं। ये स्थिति अपने आप में ऐसा लग सकती है कि यह पाखंड से भिन्न है, परंतु यदि आप थोड़ा सा भी इसे होने दें तो अंत में निश्चित रूप से यह सत्य को बिगाड़ देगी, बदल देगी, जो कि पाखंड की ओर ले जाएगी। इसलिए प्रभु कठोरता से इसके विरुद्ध चेतावनी देता है। इसके साथ साथ प्रभु निकुलियों के बारे में भी बताता है, जो सत्य को बिगाड़ने का और लोगों को भरमाने का एक उदाहरण है। मैं पहले ही आपको निकुलियों की शिक्षाओं के बारे में बता चुका हूँ। प्रकाशित वाक्य के संदेश में वे लोगों को भरमाते थे कि वे विश्वास करें कि चाहे वे कितने भी पाप क्यों ना करें तो भी वे उद्धार पा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह का इनकार करती हैं, जिसने हमारे पाप उठाकर हमारे लिए मरा। ये पूरी तरह से सत्य के विरुद्ध है। परंतु वे लोग जो संसार में पड़ गए हैं, संसार से प्रेम करते हैं, वे इस प्रकार की शिक्षाओं को मानने के लिए भरमा दिए जाते हैं निकुलियों की इन शिक्षाओं के द्वारा। ये कितना बड़ा भरमावा है उन लोगों के लिए जो संसार से प्रेम करते हैं कि वे पाप करें तो भी उद्धार पा सकते हैं, तो भी स्वर्ग जा सकते हैं। आत्मा तो साफ है और शरीर में तो मूल रूप से पाप है, परंतु क्योंकि आत्मा साफ है, क्योंकि पाप तो शरीर करता है, आत्मा नहीं, इसलिए आत्मा साफ है। इसलिए चाहे कोई भी आप पाप क्यों ना करें, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप उद्धार पा लेंगे। ये है उनकी शिक्षाएं, और ऐसे लोगों की संख्याएं अंत के दिनों में और अधिक बढ़ जाएगी। मगर उसके बावजूद भी वो ऐसा विश्वास करते हैं कि वो प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसीलिए अपने गलत कामों को एहसास करना उनके लिए आसान नहीं होता। उन्हें सिखाने और सत्य का एहसास कराने के लिए जीवन का ऐसा वचन आवश्यक है जो उनके आत्मा और प्राण को हर गांठ और हर गुदे गुदे को वार पार कर दें। उसमें साफ रूप से परमेश्वर की इच्छा दिखनी चाहिए कि प्रभु पर विश्वास करना क्या है और प्रभु से प्रेम करना क्या है, और उसे यह भी प्रमाणित करना है कि वचन सत्य है परमेश्वर की सामर्थ्य के कामों के द्वारा। केवल तभी वे लोग जो पाखंड की शिक्षाओं से भ्रष्ट हो गए हैं, वे पश्चाताप कर पाएंगे, मन फिरा पाएंगे और उद्धार प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि ऐसा करने वाले बहुत अधिक नहीं होंगे। पहला तीमुथियों 2:4 कहता है, परमेश्वर वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाएं। यह है परमेश्वर का हृदय और इच्छा। परंतु कुछ कलीसियाएं लोगों को इस प्रकार से सिखाती हैं कि केवल वही लोग जो पहले से नियुक्त और पहले से चुने हुए हैं वही उद्धार पाएंगे, मगर बाइबल ऐसा नहीं कहती है। मगर ऐसी कलीसियाएं हैं जो इस तरह से सिखाती हैं। मगर जिस प्रकार से यहां ऐसा लिखा है, इसलिए चाहे वे पाखंड की शिक्षाओं के पीछे क्यों ना थे, मगर परमेश्वर चाहता है कि वे पश्चाताप करें, मन फिराएं और उद्धार पाएं। पिता परमेश्वर नहीं चाहता कि वे नाश हों। वो उन्हें एक अवसर देना चाहता है, जैसे ना कैसे, ताकि उन्हें जीने का मार्ग मिल सके। इसीलिए वो उन्हें अवसर देता है पवित्र आत्मा के अग्निमय कार्यों के द्वारा अंत के इन दिनों में। यदि ऐसे लोग हैं जो सत्य के वचनों को सुने, उसे एहसास करें, तो वो बन जाएंगे जो जय पाएंगे और वे उद्धार प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसे मामलों के लिए प्रभु कहता है कि जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे मैं एक श्वेत पत्थर दूंगा जिसपे एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। इस प्रकार से जो वचन पिगुमन की कलिसिया को दिए गए, उसमें उनके लिए यह अर्थ पाया जाता है कि वे लोग जिन्हें उद्धार पाना मुश्किल लगता है क्योंकि वे पाखंड की शिक्षाओं के पीछे हो लिए हैं, मगर प्रभु के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा उद्धार का अवसर उन्हें भी दिया जाएगा ताकि वे अनुग्रह पाएं कि उद्धार प्राप्त कर सकें। यद्यपि ऐसे लोग थे जो अन्य जाति थे, जो प्रभु के बारे में और परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, परंतु प्रभु ने प्रेरित पत्रस को कुर्नेलियस के पास भेजा क्योंकि वो एक भला अन्य जाति था। उन्हें उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित पत्रस को एक दर्शन दिखाया और उसे कुर्नेलियस के पास भेज दिया। और परमेश्वर ने प्रेरित पत्रस को वहां पर जाने के लिए भेजा कि वहां सुसमाचार का प्रचार करें ताकि वे पवित्र आत्मा पा सकें और उद्धार प्राप्त कर सकें। सेनापति नामान वो एक अन्य जाति था। यद्यपि वो एक अन्य जाति था, मगर उसने अपने कोढ़ से चंगाई पाने का अनुग्रह प्राप्त किया। वहां बहुत से कोढ़ी थे, मगर उनकी चंगाई का इसमें कोई लेख नहीं है। मगर क्यों सेनापति नामान ही चंगा हुआ जो किसी और देश का था? क्योंकि वह ऐसा भलाई का व्यक्ति था कि वह अपनी दासी की बात तक को सुनता था। यद्यपि वह एक सेनापति था, यद्यपि वह एक उच्च पद वाला अधिकारी था, यद्यपि उसका राजा उसे बहुत अधिक पसंद करता था, उसके बावजूद भी वह छोटी सी दासी की बात को सुनता था और उन्हें मानता था। और जब उसे सच्चे और केवल एकमात्र परमेश्वर का पता चला, तो उसने अंगीकार किया कि वो केवल परमेश्वर की आराधना करेगा। क्योंकि वो एक ऐसा भला व्यक्ति था, इसलिए उसने चंगाई पाई, उसने कोढ़ से चंगाई पाई। अगले सत्र से हम चौथी कलिसिया को देखेंगे, थुआतीरा की कलिसिया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं और इस कलिसिया की मिशन टीम बड़े साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार मुस्लिम देशों में, हिंदू देशों में और कैथोलिक देशों में करते आ रहे हैं। और उन जगहों पर बहुत से कार्य प्रकट हुए और असंख्य लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और मसीहत को ग्रहण किया। और वह समय भी आएगा जब सुसमाचार का बीज यहूदी लोगों में बांटा जाएगा। मगर लोगों को सुसमाचार करते वक्त उन लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना हमें बहुत मुश्किल लगेगा जो ये कहते हैं कि वे मसीहत को जानते हैं मगर वास्तविकता में नहीं जानते, या फिर वे पाखंड की शिक्षाओं से भ्रष्ट है। उनके बजाय सुसमाचार का प्रचार करना उन्हें आसान होगा जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। क्या वे यहूदी ही नहीं थे जो कहते थे कि वे परमेश्वर को जानते और विश्वास करते हैं, मगर परमेश्वर के पुत्र यीशु को नहीं पहचाना और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया? इसीलिए उन लोगों पर सत्य प्रकट करने के लिए जो इस प्रकार की मसीहत से प्रभावित हो गए हैं, जो मसीहत बदल गई है, पतित हो गई है, या फिर पाखंड की शिक्षाओं के द्वारा भ्रष्ट और विकृत हो गई है, जैसे कि पिरगमन की कलीसिया है, उनके लिए ऐसा अधिकार और सामर्थ्य का होना आवश्यक है। हमें अवश्य ही उन्हें प्रमाण दिखाना है ताकि वे कभी इनकार ना करें बल्कि मान लें, और हमें यीशु मसीह और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करना है। यदि हम ना करें तो चाहे हम कितने ही प्रयास क्यों ना करें अपने समय और पैसों से, हम कभी भी सच्चे फलों को नहीं काट सकते। इसीलिए हमारे लिए अभी कितने सारे काम करने को बाकी है। अंत के इन दिनों में हमें अवश्य ही पिता परमेश्वर के हृदय को महसूस करना है, जो यहाँ तक कि कम से कम एक और अधिक आत्मा को बचाना चाहते हैं, और हमें पवित्रता के सुसमाचार का प्रचार करना है और परमेश्वर की सामर्थ्य को संसार भर के लोगों में बांटना है। और इस आशीषित सेवकाई में शामिल होने के लिए आपको अवश्य ही सत्य के वचनों में दृढ़ होना है। इफिसियों 6:13-17 पद कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सुसत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उधार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आपको अवश्य ही अपने आप को आत्मिक रूप से हथियार बंद करना है। आप में से बहुत से आत्मिक अधिकार और सामर्थ्य में इस तरह से उभरने पाएं और आत्मिक योद्धा बन सकें, जो परमेश्वर के राज्य को मुकम्मल कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।